परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशायाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यशायाह आहाज राजा से मिलने के लिए गया और उसे सांत्वना दिया कि परमेश्वर उसके लोगों को नाश होने से बचाएगा। और इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि उसे एक चिन्ह दिया गया कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आज फिर से आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी संगति से और हर एक प्रकार की कमजोरियों से आप छुटकारा दें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, रोजगार के कारण, आर्थिक दबाव के कारण। आप सबके साथ हो, उनके सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों यशायाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसके 15 पद को निकाल लें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। मेरे प्रियो, यह यीशु के बारे में है। यीशु एक गरीब ग्रामीण होकर बड़ा हुआ था, उसका भोजन गरीबों का आहार था। हम यशाया 7:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यह भविष्यवाणी मसीह के युग की है, आहाज के युग में इसकी संभावना नहीं थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 8 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है भविष्यद्वक्ता के दूसरे पुत्र का प्रतीकात्मक जन्म। इमानुएल के देश में अश्शूरों के आक्रमण की भविष्यवाणी। अध्याय 7-12 आहाज के राज्यकाल में दी गई भविष्यवाणियों की श्रृंखला है। कुछ लोगों ने अध्याय 7 के कुमारी पुत्र और अध्याय 8 के भविष्यद्वक्ता के पुत्र को एक ही माना है, परंतु दोनों के नाम अलग अलग हैं, अतः यह संभव नहीं है और अध्याय 9 की जानकारियों के आधार पर यह संभव नहीं है। भविष्यद्वक्ता का पुत्र एक चिन्ह था। पद 18 में आप इसे देख सकते हैं। यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इमानुएल के देश पर अश्शूर राजा के आक्रमण की भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने 500 वर्षों तक विदेशी राजाओं को अपनी प्रजा से दूर रखा था, परंतु अब वह द्वार खोलकर बैरियों को बाढ़ के समान भीतर आने देगा। वे परमेश्वर के पास आने की अपेक्षा अन्य देशों के पास समझौता करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यह अध्याय प्रेत आत्माओं से संबंध साधने के विरुद्ध चेतावनी देता है। मनुष्य हार कर शैतान के मार्गों पर चलने लगता है, जिसका परिणाम कष्ट, अंधकार और पीड़ा है। आइए हम देखें भविष्यद्वक्ता के दूसरे पुत्र का जन्म, जो एक चिन्ह है। यशाया 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महर्षल्लाह लहसबज के लिए। आप सोच रहे थे कि यशाया के पहले पुत्र शार्याशूब का नाम कैसा विचित्र है, तो अब उसके दूसरे पुत्र का नाम देखें, महर्षल्लाह लहसबज, जो किसी भी भाषा में पुत्र के लिए अति विचित्र नाम होगा। मेरे लिए भी इसको उच्चारण करना कठिन हो रहा है। आपका कुल नाम ऐसा हो तो आपको अपने संपूर्ण जीवन उसे लेकर चलना कैसा लगेगा। यशाया के पुत्र को तो वह नाम उठाना ही पड़ा था। वे शायद उसे प्यार से महेर या हाश या बज बुलाते होंगे। परमेश्वर ने यशाया के पुत्रों को यह विचित्र नाम दिया तो उसके पीछे उसका एक विशेष उद्देश्य था। देखिए पद 18 में, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। दोनों पुत्र चिन्ह स्वरूप थे और उनके नाम संदेश वाहक थे। महर्षल्लाह लहसबज का अर्थ है लूट शीघ्र आती, छिन जाना फुर्ती करता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उनके विरुद्ध है, जो परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध है। इसी बात को पौलुस रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 31 पद में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे मित्रों, इस बालक का नाम राजा आहाज के लिए भी एक संदेश था। वह परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर उसके पास आने का प्रयास कर रहा था। परमेश्वर ने यशाया से कहा कि वह एक बड़े तख्ते पर लिखे और उसे मुख्य स्थान में लटका दे कि हर व्यक्ति उसे पढ़ पाए। परमेश्वर चाहता था कि उस बालक का नाम लिखकर टांग दिया जाए कि राज्य का सबसे दीन मनुष्य भी उसे पढ़कर समझ पाए। परमेश्वर आहाज के निकट आने के लिए पहले तो यशाया के बड़े पुत्र शार्याशूब अर्थात बचा हुआ भाग फिरेगा को साधन बनाता है। इसके बाद वह यशाया के दूसरे पुत्र को साधन बनाता है। उसके नाम का अर्थ है लूट शीघ्र आती है, छिन जाना फुर्ती करता है। परमेश्वर आहाज को विश्वास दिलाना चाहता था कि वह अपनी प्रजा के वैरियों को विफल कर देगा। यशाया 8 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबेरेह क्या के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। उरिया का अर्थ है यहोवा मेरी ज्योति है, जकरिया का अर्थ है यहोवा आशीष देगा। यह एक रोचक जोड़ी है या नहीं? जी हाँ, एक तो अपने नाम से गवाही देता है यहोवा मेरी ज्योति है, दूसरा कहता है कि यहोवा का उद्देश्य आशीष देना है। इनसे उत्पन्न होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात वह अपनी प्रजा को कभी नहीं भूलेगा। यशाया के प्रत्येक काम में प्रजा के लिए एक संदेश था। वह अपने संदेश को लिखता था या करके दिखाता था कि प्रजा इसे समझे। अतः यशाया की पुस्तक एक सचित्र दृष्टांत है। हमारे प्रभु यीशु की विधि भी कुछ ऐसी ही थी। उद्देश्य यह था कि इसराइल चित्र को देखें, जैसे आज हम टीवी देखते हैं। हम में से कितने लोग इस डब्बे के समान या सामने बैठकर घंटों गवाते हैं। परमेश्वर हमारी मानसिकता को समझता है, इसलिए वह अपना संदेश सजीवता से प्रस्तुत करता है। हम यशाया की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेर-शालिस्बज रख। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, पुत्र का नाम तो पहले से दे दिया गया था। मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं यशाया 8 अध्याय उसके 4 पद में, जहां पर लिखा है, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। इससे पूर्व कि यह बच्चा बापू और माँ कहे, अश्शूरों की सेना दमिश्क, सीरिया और उत्तरी राज्य इसराइल पर आक्रमण कर देगी। यहूदा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला उत्तर दिशा का बैरी बंधुआई में जाएगा। यह आहाज की उत्तम रणनीति के नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होगा कि यहूदा बच जाएगा। परमेश्वर इस तथ्य को स्पष्ट करता है। हम यशाया की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं, इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। मेरे मित्रों, यह भी धर्मशास्त्र का एक अद्भुत भाग है। लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं। इसका अभिप्राय है कि उन्होंने परमेश्वर द्वारा आने वाली शांति को तुच्छ जाना। यहां शिलोह का धीरे धीरे बहने वाला सोता परमेश्वर की शांति का प्रतीक है। इसके विपरीत हम पद 7 में देखते हैं, प्रबल और गहरे महानद परात नदी, जहां अश्शूरों का देश था। परात नदी के बाढ़ का पानी परमेश्वर के घमंड का प्रतीक था। वह शिलोह के निर्मल जल के विपरीत था। मेरे मित्रों, परमेश्वर इन दो जल स्रोतों के द्वारा अपना संदेश पहुंचा रहा था। जैसा शेक्सपियर कहता है, पेड़ों की भाषा, जलकुंड में पुस्तक, पत्थरों में उपदेश और हर बात में अच्छाई होती है। शिलोह एक छोटा सा सोता था जिसका आज कोई भी महत्व नहीं है, परंतु यशाया के युग में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सोता था। वह सियोन पर्वत और मोरिया पर्वत के बीच में बहता है। उस सोते में एक संदेश छिपा है जिसे आप तब ही समझ पाएंगे जब आपके कान रक्त रंजित हो। इसका संदेश उसकी मधुर कलकल से भी अधिक मधुर है। यह अनुग्रह की कहानी है जो सीनै पर्वत पर प्राप्त मूसा की व्यवस्था के विपरीत सियोन पर्वत की गाथा है। मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाया था, जहां दाऊद ने अरोना का खलिहान खरीदा है और सुलेमान ने मंदिर निर्माण करवाया था, और उसी के नीचे गुलगुथा में प्रभु यीशु क्रूस पर मरा था। वह अनुग्रह का प्रतीक है। मोरिया पर परमेश्वर ने मेमना उपलब्ध करवाया था। उसने अब्राहम के पुत्र को तो बचा लिया, परंतु अपने पुत्र को नहीं बचाया। अतः परमेश्वर यहां आहाज को अनुग्रह प्रदान करना चाहता है। वह कहता है, यदि तू मेरे पास आ जाए तो मैं तुझे बचा लूंगा। यशाया 8 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा, और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा। परमेश्वर अश्शूरों को यहूदा में प्रवेश की अनुमति देगा, परंतु यरूशलेम में नहीं घुसने देगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यशाया का पुत्र बापू कहना सीखेगा, उससे पूर्व ही अश्शूर देश आक्रमण कर देगा। परंतु परमेश्वर अशूरों को यरूशलेम में नहीं आने देगा। परमेश्वर स्थान लेने वाली संयुक्त सेना के विरुद्ध में भविष्यवाणी करवाता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी उनके विरुद्ध है। यशाया 8 उसके 9 पद में लिखा है, हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपने अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। यह उन राष्ट्रों को चेतावनी है जो परमेश्वर के देश के विरुद्ध एकता करके खड़े होते हैं। यशाया अध्याय 13 से आरंभ करके हमारे पास यहाँ उन राष्ट्रों के लिए संदेश है जिनका इसराइल के साथ व्यवहार था। परमेश्वर का दंड उन तक पहुंचेगा। यह भाग 13 से 35 तक हम पाते हैं। परमेश्वर के वचन का एक अति असामान्य अंश है। इसकी अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर उसका जो उद्देश्य है उसे सब जातियां भी मिलकर नहीं रोक सकती हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि विश्व के राष्ट्र परमेश्वर से बुद्धि और सम्मति की याचना नहीं करते हैं। परमेश्वर का अपना उद्देश्य है और वह पूरा होगा। यदि कोई राष्ट्र उसके विपरीत चाल चलेगा तो उसे वह दंड देगा, अर्थात उसे दंड दिया जाएगा। यशाया 8 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। मेरे प्रियो, यहूदा को आराम और इसराइल के गठबंधन से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर के कारण उत्तरी राज्यों से आपस में समझौता कर लिया था, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है कि उनके भय के कारण तुम किसी राष्ट्र पर भरोसा नहीं करना। हम आगे चल करके देखेंगे कि उन्होंने मिस्र के साथ समझौता किया और परिणाम स्वरूप देश के साथ दुर्घटना घटी। यशाया 8 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरणागत होगा, परंतु इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। मेरे मित्रों, उन्हें परमेश्वर का भय मानना और उसी की ओर निहारना था। वह या तो उनका उद्धार ठहरेगा या ठोकर का पत्थर। इंग्लैंड के राजा क्रोमवेल से पूछा गया कि उसकी बहादुरी का भेद क्या है, तो उसने उत्तर दिया, मैंने यह सीख लिया है कि परमेश्वर से डरने वाला किसी मनुष्य से नहीं डरता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद में पौलुस कहता है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 44 पद में, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यह पत्थर यीशु है। आपके पास दो रास्ते हैं, उसे ग्रहण करें या उसका इनकार करें। हम आगे देखते हैं, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। यह एक विचित्र आदेश है। पत्रस ने इस संदर्भ को दिया है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 15 पद में, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। परमेश्वर की प्रजा को यही करना है। आज परमेश्वर और उसके वचन के प्रति श्रद्धा की कमी है। लोग कभी कभी पवित्र बातों की निंदा करते हैं। वे परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं देते और उसका मजाक उड़ाते हैं। हमें परमेश्वर को मन में पवित्र समझना है। क्योंकि आज असंख्य जन विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है और सारी पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यदि वे विश्वास करें कि वह हमारी आराधना में है तो वे यहां वहां घूमने की अपेक्षा आराधना में उपस्थित होंगे। आपने और मैंने उन्हें इसका विश्वास नहीं दिलाया है। क्या हमने उन्हें विश्वास दिलाया है कि परमेश्वर हमारी आराधना में उपस्थित रहता है? यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम में से कई स्वयं इस बात को नहीं जानते हैं। मेरे मित्रों, आइए आज के इस दिन में हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में लाएं और उसके सम्मुख पवित्र बनने का यत्न करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम जो उसके आराधक हैं हम भी पवित्र बने, ताकि हम उसके निकटता में उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। यहाँ पर यशाया यही कहता है कि उसके लोग उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्या आज हम उसकी बातों को सुन रहे हैं? यदि नहीं, तो आज हमें भी अपने आप को जांचने और परखने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है। हम अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, प्रभु के वचन पर विचार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जिसने ली